اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان مسلم لیگ یورپ کے چیف آرگنائزر ہیں شمروز صاحب شمروز صاحب اس وقت فرانس کی فضاؤں سے یورپ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ کوپن ایگن کی فضاؤں میں شامل ہیں شمروز صاحب ہم آپ کو کوپن ایگن میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں شمروز صاحب اگر آپ تفصیلی تعارف کرا دیں تاکہ بات کرنے میں آسانی رہے
رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے ریڈیو اپنے ریڈیو پہ آن لائن لیا آپ کا اور آپ کے ڈنمارک ریڈیو کے تمام عملے کا میں شکر گزار ہوں میرا نام شمروز علی گمن ہے سیالکوٹ سمڑیال کے پاس ایک گاؤں جیٹھی کی ہے وہاں سے میرا تعلق ہے اور یہاں میں فرانس میں مقیم ہوں یہاں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر یورپ کی ذمہ داری ہے میرے اوپر
مسلم لیگ جو ہے وہ پچھلے چند سالوں سے کافی ایکٹیو ہے اور گمن نام کوئی پیپلز پارٹی میں ہے کوئی مسلم لیگ میں ہے کوئی تحریک انصاف میں ہے تو کیا کوئی یہ ملی بھگت تو نہیں ہے
نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر برادری میں مختلف نظریات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے وہ پیپلز پارٹی میں کچھ گمن برادری کے ہیں تحریک انصاف میں ہیں دوسری برادری میں بھی ہیں تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں یہ اپنے نظریات ہوتے ہیں ہر آدمی کے لیکن جو میرے نظریات ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ میچ کیے اور الحمدللہ میرا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے
بہت شکریہ گمن صاحب اب آتے ہیں اب سوال و جوابات کی طرف یہ تو ایک ہمارا تعارف تھا آپس میں تاکہ ہمارے سامعین کو بھی سمجھ لگ جائے گمن صاحب
جی
آپ کی مسلم لیگ نون پی ایم ایل این کیا رول ادا کر رہی ہے یورپ میں
مسلم لیگ نون پہلے تو تھوڑی سی ویک تھی یورپ میں کیونکہ آدمی کو ریالٹی بیان کرنی چاہیے حقیقت میں پردہ نہیں ڈالنا چاہیے لیکن پانچ چھ سال سے الحمدللہ مسلم لیگ نون یورپ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے یورپ میں اب مسلم لیگ نون سب جماعتوں میں سے مقبول ترین جماعت ہے
بڑی اچھی بات ہے جی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں چونکہ چیف آرگنائزر کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو گمن صاحب آپ اپنی جو آپ کی پارٹی ہے جو جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں ان کی کیا مصروفیات ہیں آپ تو پارٹی آرگنائز کر رہے ہیں
ادھر ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں رفاع عامہ کے بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں جن کو کوئی مسئلے مسائل ہیں ادھر فرانس میں مسئلے مسائل ہیں پیرس میں ان کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کی جائے اور میں ذاتی طور پہ جتنے ہمارے دوست ہیں کمیونٹی کے مسلم لیگ نون کے دوسری جماعتوں سے بھی کیونکہ ہم اقتدار میں ہیں تو اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ مسائل پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ مسائل ان کا حل کیا جائے تو الحمدللہ 100% تو نہیں کہہ سکتے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے جہاں تک ہو سکے مجھ سے وہ میں پورے پاکستان میں یا کسی اور ملک میں یورپ میں کسی ملک میں یا کسی اور ملک میں عرب کنٹری ہیں کسی بھی جگہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو کسی امبیسی کے متعلقہ یا کوئی خارجی امور کے متعلقہ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو کسی قسم کا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ازالہ کیا جائے اور دوستوں کی کمیونٹی کی ہیلپ کی جائے
شمروز صاحب آپ دو تین دن پہلے غالباً آئے ہوئے تھے جو آپ کی جماعت کے ریٹائرڈ جنرل سینیٹر عبدالقیوم صاحب تو ان کا جو وزٹ تھا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں
دیکھیں جی جو ہمارے سینیٹر صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب جو آئے ہوئے تھے ان کی آفیشلی طور پہ ادھر آپ کے پاس بھی کچھ میٹنگیں تھیں ادھر بیلجیم میں بھی ان کی کچھ آفیشیل میٹنگیں تھیں تو وہ یورپین یونین میں اور یورپین کنٹری کو وہ پاکستان حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ہیں ہم نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو دنیا میں سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے ہماری ایجنسیز نے ہماری آرمی نے ہماری پولیس نے ہماری سیویلین لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی بلکہ 50-60 ہزار کے قریب ہم نے پاکستان نے یہ قربانیاں دی صرف اس پاکستان کے لیے محفوظ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم نے پوری دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دی اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آرمی نے शाना बशाना अपनी अवाम के साथ, हमारी अवाम अपनी आर्मी के साथ, हर अदारों ने शाना बशाना कुर्बानियां दी और पाकिस्तान को महफूज बनाया और इस दुनिया को महफूज बनाने में अहम करदार अदा किया।
गुमन साहब, आपके ज्यादातर पीटीआई वाले आप पर बड़ी तनकीद करते हैं, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ NA-122 में आपकी जमात जीत की, आपके कैंडिडेट जीत के, आपके सबका स्पीकर जीत के, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने पीटीआई वालों ने रिजल्ट को तस्लीम कर लिया, शिकस्त भी तस्लीम कर ली, लेकिन अब बहुत सारे इतराजात उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
अब देखिए जी, अगर कोई आदमी रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, तो उस क्या कर सकते हैं, उसकी अकल पे हम मातम ही कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। रही बात पीटीआई वालों की, तो उन्होंने ये वतीरा बना रखा हुआ है, इलेक्शन से पहले जब वो जुडिशियल कमीशन का फैसला आया उन्होंने ना माना, बल्कि जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, हमने आमीन किया और जुडिशियल कमीशन बना दिया। उसका जब फैसला आया तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जब इन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन होने चाहिए, मैदान पे आए हम, 50,000 वोट जो है वो आजाद के जाली हैं, मुस्लिम लीग नून के जाली हैं, तो हमारी पार्टी ने भी ये फैसला किया कि हमने स्टे नहीं लेना, हमने मैदान में आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे थे 50,000 वोट जाली हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो सीट है वो विन की और 2,500-3,000 से हमने विन की, तो शुक्र अल्लाह ताला का। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम को अब देखना है कि ये जमात पीटीआई वाले किस डगर पे जा रहे हैं। यार सारी दुनिया आगे जा रही है, आप पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती के लिए आपको हुकूमत का साथ देना चाहिए। हमारी आर्मी वो जरबे अजम में मसरूफ है, माशी हालात हमारे इतने कमजोर हैं, शुक्र है अल्लाह ताला का 23 सालों के बाद हमारे माशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करना चाहते हैं कि ये लोग अब जो वो मेजोरिटी की तरफ आए और ये बच्चों वाली ये सियासत, महल्लों वाली सियासत, इसको तर्क करें और एक कौमी जमात के तौर पे, एक बराहा एक साहब, एक कौमी लीडर के तौर पे सामने आए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुकूमत का साथ दें। और हम उम्मीद करते हैं इस रिजल्ट के बाद अब मैं ना मानो वाला जो रवैया है वो हाँ सब तर्क करेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुकूमत के साथ, जमहूरियत के साथ, हमारे जो फोर्सेज हैं उनके साथ शाना बशाना चलेंगे।
गुमन साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं और या क्या देख रहे हैं एज ए सियासी वर्कर, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है यूरोप में?
देखिए जी, सियासत करना हर जमात का हक है, अपोजिशन हो या कोई भी जमात हो, वो जितनी मजबूत होगी मुल्क का उतना ही फायदा होगा, हुकूमत का उतना ही फायदा होगा, बशर्ते कि वो पॉजिटिव सियासत करे। बदकिस्मती ये है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूरोप हो, इन लोगों का तरीकाकार एक जैसा है, एक जैसा तरीका का, एक जैसा रवैया। कुछ लोग इनमें थे अच्छे, जो तहरीक इंसाफ के जो जब ये 96 में बनी, बहुत अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, संजीदा लोग थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब वो इस जमात को छोड़ते जा रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले बहुत मजबूत थी इधर यूरोप में पीटीआई, लेकिन अब देखिए आप मुख्तलिफ कंट्री में देखें इनका क्या हाल है, वो 4-4, 5-5, 6-6 हिस्सों में बट गई है, वो जिस तरह वो हासा का रवैया उसी तरह का इनका रवैया। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कुछ ना कुछ इनको इन पे कर्म करे और ये राय रास्ते आए और जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर काम करें।
गुमन साहब, आपकी मुस्लिम लीग नून तो डेनमार्क में बड़ी मजबूत है, कोई ग्रुपिंग नहीं, आपके सदर हैं, आपके जो बाकी टीम है वो सारी अच्छा काम कर रही है, आपस में इनका कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक से कभी कभी छोटी मोटी खबरें आती रहती हैं कि दो दो तीन तीन ग्रुप हैं, तो आप इन सबको एक जगह पर क्यों नहीं इकट्ठा करते?
असल में देखिए जी, ये एक मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जमात एक जमहूरी जमात है, तो इसमें हर आदमी को हक है वो अपने ख्याल का इजहार करे, अपनी सोच का इजहार करे, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। जहां तक हमारे नजरिए की बात है, हमारे जमात के साथ वस्ती की बात है, हमारे कायद के साथ मोहब्बत की बात है, तो हम लोग सब लोग एक हैं पाकिस्तान के लिए, हम सब लोग एक हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है। और देखिये इधर हम बैठे हुए हैं, ग्यारह ग्यारह में बैठे हुए हैं, इधर हमारी क्यादत का हमारे ऊपर साया भी नहीं है, हम लोग खुद ही काम कर रहे हैं, जमात को चला रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें, सब पीटीआई देख लें, मुस्लिम लीग नून देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, तो सब में थोड़े बहुत जो जमहूरी जमातें होती हैं ना, उनमें मसले मसाले होते हैं, ये लेकिन कोई इतना इशू नहीं है।
गुमन साहब, आप यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने मसाइल की बात की, तो डेनमार्क का पहले कानून था कि डेनमार्क में डूल नेशनलिटी का कोई निज़ाम नहीं था, लेकिन यकम सितंबर से डेनमार्क में डूल नेशनलिटी का कानून पास हो गया है। और एक बड़ी अच्छी बात इस डेनिश हुकूमत ने की है, उन्होंने कोई शर्त यह नहीं रखी कि हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुआहदा किया जाए। अब जो पाकिस्तानी हैं जिनके पास डेनिश नेशनल है, उनको ड्यूल नेशनलिटी के लिए सिर्फ एक पाकिस्तान एम्बेसी को हुकूमत पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी करना है, और उसके बाद जो पाकिस्तानी है वो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा सकते हैं। लेकिन ये बात अभी तक वजारत दाखिला में अटकी हुई है, वजारत खारजा वालों ने कागज भेज दिए हैं, चौधरी निसार साहब की जो मिनिस्ट्री है, तो ये काम वहाँ अटका हुआ है, पता नहीं कौन नहीं करने होने दे रहा या करने नहीं दे रहा।
देखिए, ये जो आपका मसला है, मैं इसको पाकिस्तान में वजारत दाखला में उठाऊंगा। पिछले दिनों मसला था, स्पैनिश हमारी कम्युनिटी का मसला था, उधर जो हमारी कौंसलेट थी अमला नहीं था, तो उधर हमने रब्ता किया पाकिस्तान में, तो वो डीजी जो हमारे पासपोर्ट थे दूसरे अमले से डाला से रब्ता किया, तो वो उनका मसला हल हो गया। बल्कि हमारे दोस्त यूनान के हैं, उनका भी मसला वो तकरीबन हल होने के करीब है, तो इंशाल्लाह ये जो आपका इशू है इसको हम जो ना डिस्कस करेंगे, और वजारत दाखला तक इंशाल्लाह खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करेंगे, तो मियां साहब तक भी ये आपकी जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ये पहुंचाएगी।
गुमर साहब, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे, और सिंध में भी इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट देंगे। देखिए जी, हमने अवाम के पास जाना है अपनी कारकर्दगी बिना पर। अभी कल दो दिन पहले हमने जो किसान पैकेज दिया है उसमें 341 अरब रुपए का जो हम जो अपने किसान भाइयों की हेल्प कर रहे हैं, तो इसका भी इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव इंशाल्लाह असर मिलेगा। बल्कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने भी आज तक इतना बड़ा किसानों को उनकी मदद के लिए इतना बड़ा पैकेज नहीं दिया। और इसके साथ हम आवाम को ये भी बताएंगे कि अमन व अमान जो हमने बेहतर किया है, जो दहशतगर्दी पे हमने कंट्रोल किया है, इस इशू को भी आवाम के सामने रखेंगे, और जो हमारी मैशियत जो मजबूती की तरफ जा रही है इसको भी हम अपनी आवाम के सामने रखेंगे, और जो महंगाई में जो कमी आई है इसको भी हम जो ना आवाम के सामने रखेंगे। लोड शेडिंग, जो हर घंटे बाद लोड शेडिंग होती थी, अब शहर में 4 घंटे और गांव में तकरीबन 6-7 घंटे लोड शेडिंग होती है, तो ये सभी चीजें हमारी कारकर्दगी है, तो इंशाल्लाह इसी को लेकर हम अपनी आवाम के साथ जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारी आवाम हमारा साथ देगी और मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगी और मुस्लिम लीग नून को बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह कामयाब करेगी।
गुमन साहब, आप बताएंगे कि महर्रम के हवाले से क्या पैगाम देंगे?
देखे जी, महर्रम का महीना है, हम सब मुसलमानों को भाईचारे, कुर्बानी, रवादारी, मुसावात का यह महीना दर्श देता है, तो हमें इस महीने में कुर्बानी का जज्बा सीखना चाहिए। वो कुर्बानी किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो कुर्बानी अपने इस्लाम के लिए भी हो सकती है, अपने मुल्क के लिए भी हो सकती है, और अपने इर्द गिर्द गुरबा के लिए भी हो सकती है। तो महर्रम का महीना हमें कुर्बानी का दर्स देता है और इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद।
कुमन साहब, आखिर में आप हमारी कम्युनिटी को यहाँ क्या पैगाम देंगे, खासकर अपनी जमात को?
देखें जी, पैगाम मेरा यही है कि हम हर पार्टी, हर बंदा, हम अपने मुल्क के सफीर हैं। हमें अपने आप को इस तरह पेश करना चाहिए कि ये लोग, ये यूरोपियन लोग ये कहें कि ये एक जिंदा कौम है, ये एक असूल परस्त कौम है, ये कानून की पासदारी करने वाली कौम है, ये लोग अमन चाहते हैं, टेररिस्ट नहीं चाहते। हमें सभी को अपने जाती अख्तलाफात बलाए ताक रखते हुए अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए कि ये लोग भी हमारे ऊपर रश करें।
गुमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
जनाब बहुत शुक्रिया आपका और आपने आपके डेनमार्क रेडियो का, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।